नमस्कार, दीपन सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ अमोग्रो मित्रा की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। सभी राजनीतिक दल उत्साहपूर्वक नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की बात आती है, तो दीप्रिंट के विश्लेषण के मुताबिक ऐसा लगता है कि भाजपा से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक सभी ने ठंडा रुख अपना लिया है। जबकि बीजेपी ने हर 6 उम्मीदवारों में से सिर्फ 1 महिला को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने 7 में से सिर्फ 1 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है। इससे यह पता चलता है कि पिछले साल सितंबर में महिला आरक्षण बिल पारित होने के बावजूद राजनीतिक दलों ने अभी तक लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम नहीं किया है। आधिकारिक तौर पर संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम, जिसे मोदी सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाना है, और इसका श्रेय लेने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि नए कानून का कार्यान्वयन अगली जनगणना और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर निर्भर करता है, इसलिए इसको लेकर की गई बड़ी बड़ी बातें अभी तक कार्रवाई में तब्दील नहीं हो पाई हैं। कांग्रेस द्वारा अब तक घोषित 317 उम्मीदवारों में से केवल 13.8% महिलाएं हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके 434 उम्मीदवारों में से 16.1% महिलाएं हैं। दोनों पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में महिलाओं को उतारा है, लेकिन बिहार में किसी ने भी एक भी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। पिछले हफ्ते केरल में एक रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बताया कि कैसे महिला आरक्षण विधेयक राजनीतिक कारणों से 30 वर्षों तक लटका रहा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे ठंडे बस्ते से बाहर लाया गया। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की फैसले लेने की मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी के 434 उम्मीदवारों में से 17 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जो कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा महिलाओं को दिए गए टिकटों की तुलना में एक सुधार है। 2019 में भाजपा ने 55 महिलाओं यानी कि 12.6% को मैदान में उतारा था, जबकि 2014 में ये संख्या 38 यानी कि 8.87% थी। हालांकि ये अभी भी 33% के लक्ष्य के करीब नहीं है। कुछ राज्यों में महिला उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी है। जिन राज्यों में पार्टी ने कम से कम 10 महिला उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें छत्तीसगढ़ में 27.2% यानी कि 11 में से 3 महिलाएं, इसके बाद केरल में 25% यानी 16 में से 4 महिलाएं, झारखंड में 23% यानी 13 में से 3 महिलाएं और महाराष्ट्र में 23% यानी 26 में से 6 महिलाएं हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जहां पीएम मोदी ने पिछले सितंबर में महिला आरक्षण कानून के बारे में जोरदार भाषण दिया था, वहां भाजपा ने क्रमशः 20% यानी 25 में से 5 महिलाएं और 20.6% यानी 29 में से 6 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कर्नाटक में 25 सीटों पर भाजपा ने केवल 2 महिला उम्मीदवारों यानी कि 8% को मैदान में उतारा है, और वहीं उत्तर प्रदेश में, जहां पार्टी को ढेर सारी सीटें मिलती हैं, वहां 74 में से केवल 6 उम्मीदवार यानी 8.1% महिलाओं को टिकट दिया गया है। और कांग्रेस की बात करें तो जिसकी लंबे समय से एक महिला यानी सोनिया गांधी अध्यक्ष रहीं, उसकी स्थिति और भी दयनीय है। हालांकि संख्या में महिला उम्मीदवार इस बार कम है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ी है। 2014 में कांग्रेस ने 60 महिलाओं यानी कि 12.9% और 2019 में 54 महिलाओं यानी कि 12.8% को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार इसने केवल 42 महिला उम्मीदवारों यानी कि 13.9% को ही मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में पार्टी ने 3 महिलाओं यानी कि 25% और महाराष्ट्र में 5 महिलाओं यानी कि 31.25% को टिकट दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में केवल 1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां कुल 23 सीटों में से YS शर्मिला के अलावा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मात्र एक अन्य महिला लावण्या कावरी को टिकट दिया गया है। पिछले साल राहुल गांधी ने केरल में कहा था कि कांग्रेस की बुनियादी धारणा है कि महिलाओं को पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन पार्टी ने राज्य में 16 उम्मीदवारों में से केवल 1 महिला उम्मीदवार यानी कि 6.2% कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा है। ये महिला उम्मीदवार हैं राम्या हरिदास, जिनको अलाथुर से टिकट दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 60 सीटों में से 1 भी महिला को मैदान में नहीं उतारा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और असम में अपने 22 उम्मीदवारों में से किसी भी महिला को नॉमिनेट नहीं किया है। अगर इस पर विचार करें कि क्या महिलाओं के नेतृत्व में महिला उम्मीदवारों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है तो आंकड़ों से मिलीजुली तस्वीर उभर कर सामने आती है। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में घोषित 57 सीटों में से केवल 4 महिला उम्मीदवार हैं, जो कुल कैंडिडेट्स का मात्र 7% है। इसके विपरीत देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC ने अपने 42 उम्मीदवारों में से 12 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जो कि कुल उम्मीदवारों का 28.5% है। लोक नीति CSDS की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अनुपमा सक्सेना ने दि प्रिंट को बताया था कि उनका कहना था कि आज स्थिति ऐसी है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। राजनेता के रूप में महिलाएं बहुत स्वीकार्य नहीं हैं। वास्तव में प्रशासन, व्यवसाय, फिल्म सभी क्षेत्रों में महिलाओं को एक लीडर के रूप में कम स्वीकार्यता मिली है और राजनीति में भी कमोबेश वही स्थिति है। इसी तरह राजनीतिक विश्लेषक बद्री नारायण ने भी दि प्रिंट को बताया था कि कई लोग पुरुषों को इसलिए अधिक टिकट देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि महिलाओं में आवश्यक क्षमता और ताकत का अभाव है और वे विनेबल कैंडिडेट नहीं हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे दि प्रिंट सुप्रभात के एक और नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।